Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 16, and text number 23. Natvam dvijottam kulam yadihatma gopam. Gopta vrishaha sarvahanena sasunetram. Tarshyayeva nakshati shivastava deva pantha. Loko grahishad rishabhasya hitat paramanam. Natvam vijottam kulam yadi hatma gopam. Gopta vrisha swaharena sasunur tena. Taryah yevanang shati shivastava deva pantha. Loka grahishad rishabhasya hitat pramanam. Natvam vijottam kulam yadi hatma gopam. Gopta vrisha swahare swarhane nasa sunrunetam. Tarya evanang shati shivastava deva pantha. Loka loko agrahishad rishabhasya hitat pramanam. Bola. And purport by His loving divine grace, Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: Lord, you are the protector of the highest of the twice born. If you do not protect them by offering worship and mild words, then certainly the auspicious path of worship will be rejected by people in general who act on the strength and authority of your lordship. Purport. In Bhagavad Gita, it is stated by the Lord Himself that the acts and character of a great authorities are followed by the people in general. Leaders of ideal character are therefore needed in society. Krishna, the Supreme Personality of a Godhead, appeared in this material world just to show the example of a perfect authority, and the people have to follow his path. The Vedic injunction is that one cannot understand the absolute truth simply by mental speculation or a logical argument. One has to follow the authorities. Mahajano yena gataha sa pantha. Great authorities should be followed. Otherwise, if we simply depend on the scriptures, we are sometimes misled by rascals, or else we cannot understand or follow the different spiritual injunctions. The best path is to follow the authorities. The four Brahman sages stated that Krishna is naturally the protector of the cows and Brahmanas. Go Brahmana Hitayacha. When Krishna was on this planet, he set a practical example. He was a cowherd boy and he was very respectful to the Brahmanas and devotees. It is also affirmed herein that the Brahmanas are the best of the twice born. Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas are all twice born, but the Brahmins are the best. When there is a fight between two persons, each of them protects the upper part of his body, the head, the arms and the belly. Similarly, for the actual advancement of a human civilization, the best part of the social body, namely the Brahmanas, the Kshatriyas and Vaishyas, the intelligent class of men, the military class and the mercantile men, should be given special protection. Protection of the laborers should not be neglected, but special protection should be given to the upper orders of all classes of men. The Brahmanas and the Vaishnavas should be given special protection. They should be worshipped. When their protection is performed, it is just like worshipping God. That is not exactly protection. It is a duty. One should worship the Brahmanas and Vaishnavas by offering them all kinds of endowments and sweet words. And if one has no means to offer anything, he must at least use sweet words to pacify them. The Lord personally exhibited the behavior toward the Kumaras. If this system is not introduced by the leaders, then human civilization will be lost. When there is no protection and special treatment for persons who are devotees of the Lord, who are highly intelligent in spiritual life, then the whole society is lost. The word nakshanti indicates that such a civilization becomes spoiled and is annihilated. The kind of civilization recommended is called Devapatha, which means royal road of the demigods. Demigods are supposed to be fully fixed in devotional service or a Krishna consciousness. That is the auspicious path that should be protected. If the authorities or the leaders of the society do not give special respect to Brahmanas and Vaishnavas and do not offer them not only a sweet words but all facilities, then the path of a progress will be lost to human civilization. The Lord personally wanted to teach this, and therefore he offered so much praise to Kumaras. Om Agyana Vimilandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Melitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Na Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sayitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Yitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Brajarine Niravishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Natvam Dijottam Kulam Yadi Hatma Gopam. Atma Gopam. Gopta Vrishaha Sva Arhanena Sa Sundrutena Tarhya Evanangshati Shivas Tavadeva Pantha Loko Agrahishat Rishabhasya Hitat Pramana. In the fourth chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that Yad Yada Acharati Shrishthas Tattad Eve Toro Janaha Sayat Pramanam Kurute Lokas Tada Anuvartate Lokas Tada Anuvartate Loko Garhishat. As Lord explains in Bhagavad Gita, that whatever the leaders of the society, they do, the same thing is followed by the people in general. So here, Chatushkumaras, they are explaining the real motivation behind that, why Lord is respecting Brahmanas. He is respecting them so that the people in general should accept the same path as Lord has accepted, and they should respect and facilitate Vaishnavas or Brahmanas. As explained in other places, that Lord is always benevolent and well-wisher for Brahmanas and cows. And that's why even offering bhoga to the Lordship, we pray that Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya कृष्णाय गोविंदाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य गो ब्राह्मण हिताय च। We worship that supreme personality of a Godhead who is well-wisher of cows and brahmanas. In the first canto of Srimad Bhagavatam and same in Mahabharata, it is explained that what are the symptoms of a good civilization? How to understand that this civilization is good or bad? It is explained the seven people, they should be protected by the king. Who are they? Brahmana. Second, women. Third, children. Fourth, old people. Fifth, who are unprotected by the or unprotected by anyone, or like who are orphaned. Then the people who have come to your shelter and the seventh one, those who are like a handicap, they should be given protection, and especially the cows. They should be given protection. And if they are protected in the society, then that society is considered as a civilized society. But as Kali Yuga is growing, people, they are putting aside all these Shastric Siddhantas and they are coming up with their own ideas. What is that institution they call? Human rights. All over the world, we can see this human rights. They are generally using against the good human beings. If some government somewhere, they catch up the terrorists and they think of punishing them, then these human rights people will rise up. And they will try to protect them. And hundreds of people are getting killed by them. They don't have any problem for that. Why? Because these people are supported by the leaders of the society, who themselves are having a bad character. They are the devils in the form of a human beings. Generally people, they ask, why in today's world these demons are not visible? Who says that? They are everywhere. But you have become one amongst them, so you can't identify them. Because we don't know what are the qualities of demigods. In the previous purport, Prabhupada has explained, there are these three basic characteristics of demigods. What are they? कल के तात्पर्य में इसके बारे में चर्चा की गई थी। हाँ,
दया सौच पवित्रता, ये दया सौच पवित्रता, ये बोला।
मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल के परपट में पढ़ो भाई। हाँ, कल के परपट में दिया है, ऑस्टेरिटी तपस्या, क्लीनलीनेस शौच, और मर्सी मीन्स दया। These are the prime qualities of the people who are Brahmanas, Vaishnavas, and same qualities there with the demigods. So if you cultivate these qualities, and mass of people in the society, if they possess these wonderful qualities, then it is considered that this society is a real civilized society. And in that society, the brahmanas, dvijas are always protected. In this verse, the Chatushkumaras, they have called brahmanas as dvijottamas. So what is this dvija? Dvija means twice born. One birth, which is a physical birth or biological birth, when this body comes into existence. And second one, where one accepts the spiritual life, then that, or takes the initiation from the spiritual master, that is called as a second birth. And person, when he takes that diksha, it's called as a dvija. Janmana jayate shudra. Everyone is by birth shudra. Here shudra means contaminated, not the low class, that we have to understand. Otherwise, the people from the Arya Samaj, they misinterpret this verse. They think that here shudra means everyone, even he is born in the Brahmana family, he is also shudra. No. Shudra means contaminated. Samskaret bhavet dvijaha. If he gets a proper samskaras, then he becomes a dvija. Dvija means twice born. And it is said, this brahmanas, kshatriyas and vaishyas are all twice born. Now, the point comes, just by putting a janeu, that is upanayana, no one gets a qualification to become a brahmana. Sometimes people, they misinterpret, I'm wearing janeu, so I have a qualification to worship deities. No. Because there are vidhi and nishedas given in the scripture. If you follow them, and if you are qualified according to that, then you can worship the deities. Nowadays people, they have made so cheap the process of deity worship that anybody, even is born from the low class families, is initiated or he is given upanayama by some other low class person. They think that they are qualified to go and worship the deities in the temple. As per the agamas, to become an archaka or become a personal servant to deity, because pujari means what? Pujari means who is worshipping their lord or who is offering his services to their lordship personally, as a person, so intimate. Sometimes rather than become pujari, people become pujari. They become enemy of puja, enemy of worship. If they don't follow rules and regulations, they do the things haphazardly, as per their whims, then they become pujari. They become the enemy of worship. And that will take them to the hell. for time immemorial. Even someone is born in a high-class Brahmin family, that does not give him just qualification of worshipping the deities. In Brahmanas also, to worship the deities, there are so many categories. If you go to Tirumala, Tirupati Balaji, there are Vaikhanakas Brahmanas. Their job is to wake up their lordship. There are Samavedi Brahmanas who are appointed by Lord Himself to worship Lord personally. Only Samavedi Brahmanas. And there are other Brahmanas who are given charge for. There are some Brahmanas, they are given particular service of just getting water for the Lord to take bath. It's not that they have brought the water, so they have full rights to pour that water on the Lord. No, their job is just to get water. Then there is one class of a Brahmin, their job is to just cultivate flowers and tulasi for the worship of their lordship. It's not that they have made it, so they can go and directly offer it. Sometimes it happens, I brought this new dress, so I will dress the deities. No. Their shringari is for the Lord are different. Bhandari is for the Lord who are cooking or who are taking care of Lord's grocery, they are totally different. Everyone has his job or his services to offer their lordship as per their qualification. So one need to be know all these things. Then this civilization is called as a proper human civilization. Nowadays they read here and there little bit of the here, something of, and without understanding properly, maturely, with the maturity, they try to apply it and they wanted to argue for that. The wonderful quality that has explained in the Upanishads to acquire a spiritual life, spiritual knowledge, is inquiry, not the arguments. Nowadays, people think that arguing means inquiring. Or sometimes they think inquiring means you should argue, then only. It never happens like that. In the fourth chapter of Bhagavad Gita, Lord Himself, He says, how to acquire this spiritual knowledge? Tadviddhi pranipatena pariprashnena sevaya. Pariprashna, not vivad. People think that pariprashna means arguments. How to put forward my arguments? Then I can come to know. You will not come to know anything by putting arguments. Because tarko apratishtaha. With a tarka, with arguments, you can't understand the absolute truth and the knowledge about this. So the first and foremost quality of a brahmana is vinaya, humility, namrata. Vidya vinayena shobhate. If someone has a knowledge, that knowledge gets adorned by humility. So who is brahmana? The person who is humble. Now, in the Brahmanas and Vaishnavas, the book where there is a wonderful essays which are like transcriptions of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's lectures in Midnapur, there he writes why these Vaishnavas, they are greater than the Jati Brahmanas. Because the first and foremost quality of a Vaishnava is that they consider themselves as a deen. They consider themselves as low as they can. And that humility makes them more pure and respectable than the Brahmins. And we can see in the lives of great acharyas how they have shown by their own example that whom and how one should adore. Like Sripad Ramanujacharya, he belongs to a very high class Brahmin family. But the way he has shown his respect to Kanchipurna, who was born other than the Brahmin family, that shows even the Vaishnavas are more respectable than the Brahmanas, or the person who had just taken birth in a Brahmin family. Govinda kahena mora Vaishnava paran, because Lord he himself thinks that these Vaishnavas are my life and soul. Irrespective of family they are born, irrespective of place they are born, but because they have this wonderful quality, full surrender at the lotus feet of their Lordship, that makes them more glorious, more worshipable. And that's why here it is said, one should worship the Brahmanas and Vaishnavas by offering them all kinds of endowments and sweet words. If one has no means to offer anything, he must at least use sweet words to pacify them. The Lord personally exhibited this behavior towards the Kumaras. And if this system is introduced by the leaders, then this human civilization will be protected. Otherwise, it will get lost. And when there is no protection and special treatment for the persons who are the devotees of the Lord, who are highly intelligent and who are leading the spiritual life, then what will happen? The whole human society will be lost. So if you want to save the human society, then save the devotees, the Brahmanas, the Vaishnavas, because that is the path of Deva Pantaha, that road which leads you to the demigods. Because demigod means who are supposed to be fully devotional, fixed in a devotional service. So Lord personally wanted to teach this, and therefore he offered so much praise to Kumaras. Hare Krishna. माता लक्ष्मी
उससे पहले एक चीज है, एक श्लोक पढ़ा था, मैंने याद भी किया था, सत्कर्म निपुणो भी मंत्र तंत्र विचार वैष्णव गुरु ना सर वैष्णव सपचो गुरु कहीं पढ़ा था, कुत्ता खाने वाला भी हो अगर वैष्णव तो गुरु बन सकता है।
कुत्ता खाने वाला हो नहीं, अगर चांडाल के घर में भी पैदा हुआ, शौपच यानी चांडाल, तो जब भी वैष्णव हो जाएगा तो थोड़ी कुत्ता खाएगा, ऐसे व्यक्ति को गुरु
खाते कुत्ता खाने परिवार के जो है खाने वाला खाया भी हो कोई बात नहीं, अगर मतलब वैष्णव बन गया तो वो गुरु बन सकता है, लेकिन सत्कर्म मतलब ज्ञान का भेद
षटकर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्या, तो वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन गुरु कौन बन सकता है? वो जो वैष्णव है, चाहे फिर वो श्वपच क्यों ना हो, चांडाल भी क्यों ना
हो।
नहीं है, गीता में नहीं है या भागवत में कहीं पे नहीं है, बल्कि वो चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन आता है। महाप्रभु जब बताते हैं कि वह विप्र कि बस क्षुद्र किरणों हो, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। और ये कैंटों में भी जब श्वपचो वर्तते नाम तुभ्यम यत किरियान, अगर कोई व्यक्ति श्वपच क्यों ना हो, चांडाल घर में क्यों ना पैदा हो, अगर उसकी जिह्वा पे आपका नाम है तो वो भी उत्तम कहा गया है। प्रोवाइडेड दैट बिग प्रोवाइडेड थिंग इज देयर इन ब्रैकेट, इफ ही इज अ वैष्णव, इफ ही इज अ फुल्ली सरेंडर, एंड फुल्ली सरेंडर पर्सन बिकम ए मर्सी और इज ऑलवेज मर्सीफुल टू एवरीवन, देन हाउ यू कैन ईट डक। देखो थोड़ा समझो,
नहीं
मैं बता रहा हूँ किसी भी चीज को x इज इक्वल टू y, दैट्स y इज इक्वल टू z, ये ऐसे नहीं डालना चाहिए कभी। उसके पीछे का अर्थ समझना, सिद्धांत क्या है उसके पीछे, शास्त्र क्या है, वेद माता, शास्त्रों के द्वारा गुरु के द्वारा हम सिद्धांत को समझ सकते हैं और जब उनका पालन करते हैं तो भगवान के पास जा सकते हैं। तो शास्त्र में दिए गए विधि निषेधों को हमें समझना चाहिए। अगर वैदिक कर्मकांड करना है तो वैदिक कर्मकांडों के विधि निषेध के अनुसार किसी भी स्त्री को मंदिर में रखे हुए मूर्तियों की पूजा के लिए ये नहीं दिया, अनुमति नहीं दी, वो निषेध है कर्मकांड के, वैदिक कर्मकांड के अनुसार। और वैसा देखा जाए तो स्थल काल परिस्थिति अनुरूप आचार्य इन शास्त्रों के नियमों को थोड़ा बहुत बदल के दे देते हैं। नहीं तो लोग सोचेंगे आजकल इस्कॉन में तो स्त्रियां ही सारा कुछ कर रही है, तो फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि वैदिक कर्मकांड के विधि नियमों के अनुसार अगर निषेध को अगर पालन करते हो तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। और उसके परिणाम भी बताए गए कि नरक का रास्ता आप खोल देते हो अपने लिए। लेकिन अगर कोई आचार्य प्रतिपादित करते कि ठीक है आप करो, तो उससे होने वाले जो भी पाप कर्म है वो खुद भुगतने के लिए तैयार रहते, क्योंकि उनके कहने पे वे कर रहे हैं, अपने मन से तो नहीं कर रहे। पाप तो है लेकिन उनका परिणाम वो भुगतेंगे, इस व्यक्ति को उसको कुछ होगा नहीं। शास्त्रों में ये भी विधि दी गई है। तो हमें देखना है, जैसे बताते हैं कि स्वे स्वे कर्म अभिरत है, भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि हर कोई अपना कर्म उत्तम प्रकार से करे तो फिर समाज देव समाज ही बन जाएगा। कोई स्त्री अगर अपनी पतिव्रता का पालन करती है तो यमराज तक को वो जीत सकती है। माता सावित्री का उदाहरण है कि अपने पतिव्रता पातिव्रत्य के तेज से वे यमराज के साथ पूरे यमलोक तक गई और अपने पति को वापस लेके गई। अगर एक स्त्री अपने पातिव्रत्य का इतना पालन करके वहां तक पहुंच सकती है, अपने कर्म में अभिरत रहती है, तो वही स्त्री एक ऐसे समाज को जन्म दे सकती है जो देवताओं का हो सकता है। अगर वही स्त्री अपने धर्म में रत न रहते हुए अगर अधर्म का साथ देगी तो भगवद गीता में कहा गया अधर्मो अभिवात कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिया स्त्रीशो दृष्टासु। अगर एक स्त्री दुष्ट हो गई तो सारा समाज नष्ट हो सकता है। एक ब्राह्मण अगर अपने कर्म में अभिरत रहा, अपने कर्म के अनुसार कार्य करने लगा तो पाप हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म इसलिए होता है कि वो अन्य लोगों को सही रास्ते पर। क्षत्रिय आजकल तो है ही नहीं, लोगों को लगता है कि पुलिस में भर्ती हो गया या बॉर्डर पे जाके बंदूक थमा लिया तो वो क्षत्रिय हो गया। क्षत्रायती सह क्षत्रिय, जो क्षति से लोगों को बचाता है, उनकी संरक्षण करता है, वो क्षत्रिय है। कहाँ ढूंढोगे क्षत्रिय आजकल बताओ? उसको मालूम होना चाहिए कि कहां पे क्षति हो रही है, धर्म के रास्ते पे हो। जैसे यहां पे बताया गया कि ब्राह्मण और वैष्णवों का संरक्षण करना चाहिए, कौन करेगा वो कार्य? क्षत्रिय का। धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक जो बल है या आवश्यक जो रक्षा है वो अगर क्षत्रिय देता है तो वो क्षत्रिय है। आजकल क्या है, सारे चोर लुटेरे भरे पड़े जो क्षत्रिय के भाव में, और क्षत्रिय को जो कार्य व्यवस्था करनी चाहिए अगर वो वैश्य करने लगा तो क्या होगा, ये आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। क्षत्रिय कभी अपने समाज को खा नहीं सकता, समाज के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन जो केवल फायदा देखता है हर चीज में उसको वैश्य कहा गया। अगर उस वैश्य को एडमिनिस्ट्रेटर बना दोगे तो हर चीज फायदे की सोचेगा ना, उसमें अपना नुकसान तो सोचेगा नहीं। फिर वो समाज कहां जा रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा दुनिया कौन चला रहा है, सारे वैश्य चला रहे। तो उनके पास ना तो धर्म के लिए ज्ञान है और ना ही धर्म कि रक्षा के लिए जो आवश्यक बल चाहिए वो उनके पास है। इसीलिए स्वे स्वे धर्म अभिरता, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो अपने कर्म में हमें लगना चाहिए, और समाज तभी तक सुव्यवस्थित रहेगा जब उसका काम जिसका काम वो करे, नहीं तो फिर है ही है केवास है ही है। प्रभुपाद बताते हैं कि दिस सिविलाइजेशन नथिंग बट सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। क्यों? कुत्ता अपने के फायदे से सोचता है, बिल्ली अपने फायदे के सोचती है, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं रहती कि सबके बारे में सोचकर सबको आगे बढ़ाना है तो क्या करना है। वो बुद्धि मिलती है ब्राह्मणों से, इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करता है ताकि किस चीज को संरक्षण करना है, किस चीज को वृद्धि करना है, किस चीज को कर्टेल करना है वो क्षत्रिय कर सकता है। इसीलिए कई बार कई चीजों में हमें विरोधाभास दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे सिद्धांत क्या है वो समझना है। और आजकल होता क्या है मालूम है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी यानी एक दो चार बुक पढ़ लिए ना, हो गया हम भी स्पिरिचुअल है, हमें भी गीता मालूम है, भागवत मालूम है, और बच्चे को सवाल पूछेंगे ना तो फिर इनकी विकेट उड़ जाती है और फिर बच्चे उसको स्वीकारते नहीं, और हम दोष किन को देते, फिर बच्चों को दे देते, देखो अभी 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, मानते ही नहीं हमारा, सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं, क्यों सुनेंगे आपका? आपके पास उनको कन्विंस करने के लिए ज्ञान है नहीं है ना, वो मानते नहीं है, लगता है कि हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली तो जीवन जीने का तरीका आ गया। कौन सा तरीका आ गया? जो चीज हम कर रहे हैं उसके पीछे भी कुछ कारण है, वैज्ञानिक कारण है। और वैदिक शास्त्र ये केवल माइथोलॉजी नहीं है, या ऐसी कोई भ्रामकता नहीं कि किस बूढ़े को कुछ काम नहीं था इसलिए पेड़ के नीचे बैठ के लिख के रख दिया उसने, नहीं है। ये उन फोर्सियर्स ने, उन दिव्य दृष्टि वाले ज्ञाताओं ने लिखा है कि हजारों साल पहले उनको मालूम था कि आज के समाज की स्थिति क्या होने वाली है। और उस ज्ञान को अगर वैज्ञानिक रूप से अगर हम सीखेंगे नहीं, इस प्रकार के फिर प्रश्न हमारे मन में आते हैं। इसलिए शास्त्र, गुरु और साधु, इनको जीवन में स्वीकारना बहुत आवश्यक है। कई लोग तो बोलते गुरु की क्या आवश्यकता है, गूगल पे टाइप करो सारा मिल जाता है ना, हो गया।
गूगल,
हाँ गूगल कोई गुरु बना लो, नॉलेज ऑन योर फिंगर टिप्स। लेकिन वो नॉलेज कितना रिलायबल है, उसके पीछे कितना अनुभव है, किस परंपरा से उस ज्ञान को प्राप्त किया है, वो मायने नहीं रखते। और ऐसा नॉलेज लो कि आज बड़े बड़े, कई बार तो हमने देखे ऐसी, अपने जीवन की बात बताते, विवाह के पश्चात जब पहली बार मार्केट चले गए तो सामान वगैरह खरीद लिया, खरीदने के बाद जब आ रहे थे तो हॉकर जो था वो ठेले वाला, उसने पूछा, प्रभु जी बोला पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है क्या? बोला हाँ भाई पीएचडी की है। मालूम पड़ा? बोले क्या हुआ तुमको कैसे मालूम? कुछ नहीं, बोले टोमेटो सबसे नीचे रखे ऊपर सब्जी रखी है। क्या हो गया? सो मटेरियल एजुकेशन डज नॉट गिव यू अ प्रॉपर वे ऑफ लिविंग, दैट डज नॉट गिव यू अ मैच्योरिटी टू लिव योर लाइफ, दैट कम्स फ्रॉम द वैदिक नॉलेज ओनली। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है अगर वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है या अच्छी तरह से कोई भाषा बोल सकता है, जरूरत नहीं है। कई सारे विद्वान हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आते, तो ऐसा समझोगे कि वो सब बुद्धू है, और फ्लूएंट इंग्लिश बोलने वाला धोने के लिए भी नहीं आता होगा उसको, तो भी बोलेंगे क्या बहुत व्यवहार्य है, नहीं है ना वैसे। इसलिए शास्त्रों का मर्म जानने के लिए गुरुओं को स्वीकारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों का निकष जो है वे वो, या निचोड़ जो है वे वो ही दे सकते, कि क्यों उनका वो अनुभवजन्य ज्ञान है, तभी इन सिद्धांतों को हम अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, और कुछ?
हमारे कर्म के अनुसार जो गुरु को मानते
हैं, हाँ
हमारा जो कर्म वो ले रहे हैं वो गुरु को नहीं हो,
हाँ भुगत तो भुगतना तो पड़ता है। कई सारे उदाहरण है हमारे सामने, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, ये क्या हो? उनके पाप थोड़ी है, वो निजी पाप, कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ता ही है ना। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि उतना ही स्वीकारो जितना डाइजेस्ट कर सकते हो, ज्यादा शिष्य मत बना, उतनी झेलो, इसलिए आवश्यक है। इसको ही कहते हैं विधि और निषेध। विधि यानी वो चीजें जो इस प्रकार से करनी है, वहां पे स्वतंत्रता है, करना है तो करो नहीं तो छोड़ दो, लेकिन यहां पे निषेध है, वो निषेध ही है, एक नहीं करना है ने नहीं करना है, करोगे तो फिर बहुत बुरी तरह से फंसोगे। जैसे यहां लिखा है ये बटन है स्विच, अगर ये ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाएगा, और उसके बाजू में ही लिखा है कि यह 440 वोल्ट का सॉकेट है, हाथ डालोगे तो शॉक बैठेगा। नहीं क्या होता है देखते, डाल दिया क्या होगा, झटका तो बैठेगा। इसलिए जो निषेध है उनके बारे में बहुत ही संभल के हमें रहना है। विधि के लिए ठीक है, स्वीकार सकते हैं नहीं भी स्वीकार सकते हैं। अगर किसी को, इसलिए कर्मकांड में दिया गया कि अगर इतने सारे व्रत करोगे तो इसका परिणाम ये मिलेगा, वो तो मिलेगा ही आपको, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो निषेध है कि ये कार्य करते समय इसको नहीं करना है, नहीं मैं ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, करोगे तुम? यम नियम ये बहुत ही आवश्यक है इन चीजों को समझ, अन्यथा बहुत कठिन है। फिर देखो अभी पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र ये रविष्ठा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो चीज है ना इसके पीछे लग जाते हैं, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नेम फेम, सेम ओल्ड गेम, उसी में ही फंसे पड़े हैं। अरे आए इस भौतिक जगत में तो सबसे पहले ब्रह्मा थे हम, ब्रह्मा कौन सी पोजीशन थी, एक सृष्टि के सृजन करने वाले, एक ब्रह्मांड के पूरे विधाता थे हम, जो सबका भाग्य लिखते थे। आज क्या स्थिति है, ये पतन होते जाता है क्योंकि संसार का नियम है कि बस सिंक होते जा, गिरते जा, नीचे गिरते जा। हाँ भगवत धाम से गिरती ब्रह्मा ही बना हो, और कुछ बन ही नहीं सकता ना, इतना क्वालिफाइड बंदा और क्या बनेगा वो, ब्रह्मा से तो बढ़ के और कोई पोस्ट है नहीं इस दुनिया में, तो वही सबसे पहली पोस्ट दे जाते। जब वो सोचता है कि मैं भोग करूं तो भगवान बोलते ले होलसेल में कर ले, बन जा, टॉप मोस्ट बना देते। जो अपने आप को गिराते हुए इतना तक गिर जाता है, फिर कठिन है ना। इसीलिए कहते कि दुर्लभ मनुष्य जन्म तद अपि अध्रुवम, ये मनुष्य जन्म ही इतना दुर्लभ है क्योंकि इतने प्रयासों के पश्चात ये मिलता है, और वो भी अध्रुव है, वो भी टेम्पररी है, कब खत्म होगा मालूम नहीं। इसीलिए टेक इट सीरियसली एंड टेक ऑफ, निकल पड़ो। इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं मेक दिस लाइफ टाइम एज अ लास्ट, नो मोर कमिंग। तो अगर वो लाइफ टाइम को लास्ट बनाना है तो बिहेवियर कैसा चाहिए? हाँ
छोड़ो घर बार चालो है,
दैट इज नॉनसेंस। वो कोई फालतू जिसको शास्त्रों का गंभीरता नहीं है ऐसे व्यक्ति की ये वचन हो सकते हैं। शास्त्र कहीं नहीं बताए कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो और भाग जाओ करके, कहीं नहीं वर्ण। उल्टा शास्त्र बताते कि जो ऐसे करके जाएगा तो जितने कौन गधा है फिर वो, अगर ऐसी चीजों का प्रचार करना है। यस, ये मजाक करने के लिए नहीं है ये चीज, ऐसे जगह पे बैठ के मूर्खता है ऐसे सारी चीजें बोलने के लिए। व्यासासन, व्यासासन नहीं है, व्यासों का आसन है। यहाँ पे वही डिस्कस करो जो व्यासदेव ने कहा। अगर आपको जोक भी क्रैक्स करने हैं ना तो शास्त्रों में इतने सारे विनोद है जिसके पीछे सिद्धांत है, कुछ नया मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है हमें। तो वही ना, उसी के कारण तो पतन हो रहा है। कहाँ थे हम, हजारों लोग थे पहले मंदिरों में, कहाँ है अभी, कुत्ता भी नहीं मिलता हमें देखने के लिए, ऐसी स्थिति हो गई। क्योंकि अपने स्टैंडर्ड को, अपनी इसको मेंटेन नहीं करोगे तो यही हाल होगा। ये तो लोगों को अच्छा लगता है इसलिए कुछ भी बोलते रहो। किसको
मतलब, मेरे कहने का मतलब ये सारा चीज जो हो रहा है ये तो निश्चित है ना।
कौन सा,
जो भी डिग्री हो रहा है ना, मतलब प्रॉपर
प्रोवाइडेड, वो भी बोले है ना, वो कोई बोलता नहीं है कि अगर हम उसका अभी पालन करेंगे तो आगे कुछ दे पाएंगे ना। अगले 10,000 आने के लिए अभी के 100 साल तो ठीक से चले, तो फिर आगे के 10,000 के बारे में सोचे। अभी 50 हो गए तो मालूम पड़ रहा है कि जो बिगिनिंग में थे उसमें से आधे भी नहीं बचे है करके, आगे क्या ले जाओगे। इसलिए गंभीरता से जब इन सिद्धांतों का अपने जीवन में नहीं पालन कर पाएंगे, उसमें अगर डायल्यूशन लाते जाएंगे तो क्या होगा। अब हो रहा है वो, अभी प्रभुपाद ने बाहर के कई सोसाइटीज में, जहां पे वो पहले यहां पे जब आए तो किसी के आश्रम में जाके प्रचार कर रहे थे, वहां पे लोगों को, वहां पे जो प्रचार है उसके साथ अपना प्रचार नहीं किया उन्होंने, अपना जो सिद्धांत है उसी को प्रस्तापित किया, इसके लिए उनके चीजों का सहारा नहीं लिया। और आजकल हम उल्टा कर रहे हैं, नहीं लोग अगर हम डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस नहीं ले सकते, हमको ऐसे करके देना है। आप आचार्य हो जो आप डिसाइड करोगे ये लोगों को हमें ऐसा देना है करके, जो आपके आचार्य ने दिया उसका पालन करो ना, तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो डाइवर्जन इतना क्यों आ रहा है हमारे इसमें, क्यों प्रचार नहीं हो पा रहा है। जैसे उन्होंने दिया वैसे उस प्रकार से हम आगे ले ही नहीं जा पा रहे ना। जब ऑफशूट्स निकलते हैं तो समझ लो हम अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। आज तक 750 के 1000 साल से देख लो श्री संप्रदाय या मध्व संप्रदाय, ये लोगों ने कोई डायवर्जन यूज किया कि लोग इसको डायरेक्टली नहीं ले रहे, हमको ये करना चाहिए फिर ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ किया आज तक? नहीं। तो अपने सिद्धांत को समझकर अपने सिद्धांत में और जो हम सोच रहे हैं उसमें क्या फर्क है उसको जानना चाहिए ना। 700 साल में एक बंदा उसका पतन हुआ, पतन भी यानी विवाह किया, ऐसा नहीं कि किसी स्त्री को लेके भाग गया, अपनी चेली को ही लेके भाग गया। इसलिए जब तक इन चीजों को हम अपनी तरह से अच्छी तरह से अहमियत नहीं देंगे, हम सोचते कि वे लोग प्रचार नहीं करते लेकिन उनका आचरण ही प्रचार है, क्योंकि अभी तक वो सैंक्टिटी, वो प्योरिटी, वो शुद्धता उन्होंने मेंटेन करके रखी। और ऐसे लोगों के पवित्रता के कारण ही संसार में बाकी चीजें चलाए माने। ठीक है, और कुछ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
देखा ही पड़ रहा होगा जी, 700 दिन ऐसा।